వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ. భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తేర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్కో స్వాగత్ కర్తే హై. ఖాస్ కర్కే ఆజ్ హమ్ అధిక మాస్ యా పురుషోత్తమ మాస్ ఉస్కే విశేషతా కే బారే మే చర్చా కరేంగే. జ్యేష్ఠ మహీనా కే ఏక్దమ్ బిల్కుల్ బీచో బీచ్ యే మహీనా ఆ రహా హై, జిస్కా నామ్ హై అధిక మాస్. ఆయే పహలే హమ్ దేఖతే హై కి అధిక మాస్ కో అధిక మాస్ క్యో కహా జాతా హై, క్యోంకి యే సాల్ 12 మహీనా నహీ బల్కి 13 మహీనా హోతా హై. క్యో హై 13 మహీనా? క్యోంకి సూర్య మాన ఔర్ చంద్రమాన యే దో ప్రకార్ కే క్యాలెండర్ అభీ భీ ప్రచలిత్ హై, ఔర్ అనేకో అనేకో సాలోన్ సే యే దో ప్రకార్ కే సమయ కీ గణనా హై, ఏక సూర్య కే అనుసార్ ఏక చంద్ర కే అనుసార్. సూర్య కే అనుసార్ జో సమయ కీ గణనా హై వో సంక్రాంతి సే సంక్రాంతి తక్ హోతా హై. వైసే తో ఆజ్కల్ హమ్ జో క్యాలెండర్ ఇస్తేమాల్ కర్తే హై వో జార్జియన్ క్యాలెండర్ కే నామ్ పే ప్రసిద్ధ హై, జో పాశ్చాత్య దేశ్ కే సభ్యతా కే ఉపర్ ఆధారిత్ హై. ఇస్కో ఖాస్ కర్కే హమారే భారతవాసీ ఉస్కో ఉత్నా మహత్వ దేనా నహీ చాహియే. జైసే జన్మదిన్ కిసీ కో మనానా హై తో డేట్ కే హిసాబ్ సే నహీ మనానా చాహియే, క్యోంకి యే వైదిక పద్ధతి నహీ హై. యా చాంద్రమాన్ కే అనుసార్ మనాయియే, యా సూర్యమాన్ కే అనుసార్ మనాయియే. యే చాంద్రమాన్ సూర్యమాన్ కే పహలే నక్షత్రమాన్ థా, 27 నక్షత్ర హై ఔర్ ప్రత్యేక రోజ్ ఏక్ ఏక్ నక్షత్ర హోతా హై. వో నక్షత్ర కే అనుసార్ ఆప్ అప్నా జన్మదిన మనాయియే. జైసే ఆప్ దేఖియే కి ఏక్ డేట్ కే అనుసార్ వో కోయి జన్మదిన మనాతా హై. జైసే గాంధీజీ కా జన్మదివస్ హై 2 అక్టోబర్ హై, తో హర్ సాల్ 2 అక్టోబర్ కో మనాతే హై. లేకిన్ జబ్ జన్మాష్టమీ ఆతీ హై వో తిథి కే అనుసార్ హై, తో హర్ సాల్ ఏక్ హీ డేట్ కో నహీ హోతా హై. క్యో నహీ హోతా హై? క్యోంకి యే అష్టమీ యా తిథి జో హై వో చాంద్రమాన్ కే అనుసార్ హై, చంద్ర కే క్యాలెండర్ కే అనుసార్ హై. యానీ చంద్ర కా మహీనా కౌన్ సా హై? చైత్ర హై, వైశాఖ హై, ఆషాఢ హై, జ్యేష్ఠ హై. ఇస్ ప్రకార్ కే మహీనో కి గణనా కే అనుసార్ హోతా హై. ఉస్కే అనుసార్ కౌన్ సా పక్ష హై, పక్ష కా అర్థ క్యా హై? జో చంద్రమా కా జో పూర్ణిమా సే బీచ్ మే అమావాస్య ఆతా హై, అమావాస్య వేస్ వాపస్ పూర్ణిమా ఆతా హై, యే 15-15 దిన్ కా జో హై పక్ష బోలా జాతా హై. తో చంద్ర మాస్ కే అనుసార్ పక్ష హోతా హై, ఉస్కే అంతర్గత తిథి హోతా హై, ప్రతిపదా ద్వితీయా తృతీయా. తో ఇస్ ప్రకార్ యే జో చంద్రమాన్ కే అనుసార్ జో ఏక్ క్యాలెండర్ కి వ్యవస్థా హై, దూసరా వైసే హీ సూర్యమాన్ కే అనుసార్ క్యాలెండర్ కి వ్యవస్థా హై. క్యా హై వో? సంక్రాంతి. బడా ప్రసిద్ధ సంక్రాంతి హై మకర సంక్రాంతి. జబ్ సూర్య రాశి కో బదలీ కర్తా హై ఉస్కో సంక్రాంతి కహా జాతా హై. జబ్ చంద్ర అప్నీ రాశి కో బదలీ కర్తా హై తో 12 రాశియో కో పూర్ణ కర్కే జబ్ చంద్ర వాపస్ ఉసీ స్థాన్ పే ఆతా హై తబ్ ఏక్ సాల్ హోతా హై చంద్ర కా. సూర్య జబ్ 12 రాశియో కో పూర్ణ కర్కే ఉపీ ఉసీ స్థాన్ పే ఆతా హై తబ్ సూర్య కా ఏక్ సాల్ హోతా హై. సమస్య యే హై సూర్య కా గతి ఔర్ చంద్ర కా గతి మే థోడా అంతర్ హై. అంతర్ హోనే కే నాతే చంద్ర థోడా సా ధీరే చల్తే హై సూర్య సే. ఇస్లియే చంద్రమాన్ కే అనుసార్ ఏక్ మహీనా జో హై 29 దిన్ 14 ఘంటే కే కరీబ్ హోతా హై. వైసే హీ సూర్య కే అనుసార్ ఏక్ మహీనా జో హై 30 దిన్ 14 ఘంటే కే కరీబ్ హోతా హై. అగర్ ఇస్కో పూరా సాల్ భర్ కే హిసాబ్ సే లేంగే తో 29 దిన్ ఔర్ 14 ఘంటా కరీబన్ సమజ్ లీజియేగా 354 దిన్ మే చంద్ర జో హై ఉన్కా సాల్ పూరా హో జాతా హై. ఉస్కే వజహ సే సాల్ జో హై ఉన్కా జల్దీ హో జాతా హై. సూర్య కే తుల్నా మే చంద్ర కా జో ఏక్ సాల్ జో హై వో పూరా జల్దీ ఖతమ్ హో జాతా హై. 354 దినో మే చంద్ర కే అనుసార్ ఏక్ సాల్ పూరా హో గ్యా. सूर्य के अनुसार पूरा साल 365 दिन के करीब 365 से थोड़ा सा एक आध कुछ घंटे जो है वो ज्यादा सूर्य का एक साल होता है. अभी ये सूर्य के द्वारा कैलेंडर जो है और चंद्र का जो गति के अनुसार कैलेंडर है, चंद्रमान और सूर्यमान को बराबर करने के लिए एक एक्स्ट्रा महीना, क्योंकि हर साल में करीबन 11 दिन का फर्क हो जाता है. चंद्र जो है 11 दिन पीछे रह जाते हैं, इसलिए इस 11 दिन को करीबन 3 साल अगर एकदम एग्जैक्टली बताया जाए 32 महीना 16 दिन और 8 घड़ी. 8 घड़ी का अर्थ मान लीजिए 3 घंटा 12 मिनट. यानी पुरुषोत्तम मास एक एक्स्ट्रा महीना कब आता है? हर 32 महीना 16 दिन 12 मिनट के बाद पुरुषोत्तम मास या अधिक मास शुरू होता है. तो ये अधिक मास का अवधि भी निश्चित नहीं रहता है, हर साल जो है थोड़ा आगे पीछे रहता है. कभी 29 दिन रहता है, कभी 30 दिन रहता है, कभी 28 दिन भी रहता है. तो ये इस प्रकार इसलिए किया जाता है ताकि सूर्य का कैलेंडर और चंद्र का कैलेंडर, सूर्यमान और चंद्रमान के बीच में जो अंतर उत्पन्न होता है हर साल करीबन 11 दिन का अंतर होता है, उस अंतर को दूर करके दोनों को बराबर स्थिति में लाने के लिए इस प्रकार का अधिक मास का वर्णन किया गया है. अधिक मास को हमारे वैदिक कैलेंडर में वैदिक चंद्रमान और सूर्यमान को संतुलन करने के लिए एक अधिक मास का निर्माण किया गया है. हमारे वैदिक परंपरा में हरेक घड़ी, हरेक दिन हो या रात हो, पक्ष हो या मास हो या साल हो या युग हो, हरेक चीज के एक अधिष्ठात देवी होती है या अधिष्ठात देवता होते हैं. दिन के अधिष्ठात देवी देवता अलग होते हैं, रात के भी अनेकों अनेकों प्रकार के भागों में अलग अलग प्रकार की देवियां जो हैं उसके अधिष्ठात अधिष्ठात्री रहती हैं. उसी प्रकार प्रत्येक महीने का एक अधिष्ठात देवी होती है. अभी ये जो अधिक मास है उसके भी एक अधिष्ठात देवी है. समस्या क्या होने लगी, ये अधिक मास के समय कोई तिथियां नहीं आती है, कोई मुहूर्त नहीं आता है. द्वादशी आता है, एकादशी आता है, पूर्णिमा आता है, अमावस्या आता है, क्योंकि वो तो नक्षत्रों की या सूर्य का चंद्र का वो मूवमेंट की वजह से ये तिथियां तो आना ही है, ये पक्ष तो आना ही है. लेकिन फिर भी जैसे कोई त्योहार होता है, दशहरा हो, दिवाली हो, या कुंभ त्योहार उत्सव जो है, या विवाह का तिथियां है, वो सब ये अधिक मास में आता नहीं है. इसके वजह से लोग कहने लगे ये अधिक मास जो है मल मास है, ये अधिक है, इसमें तो हम कुछ अच्छे काम नहीं कर सकते, क्या फायदा इस मास का. सभी लोग इस अधिक मास को खूब बुरी बुरी निंदा करने लगे. बिचारी देवी जो है अधिक मास की अधिष्ठात्र देवी, वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि प्रायः लोग जो है धार्मिक होते हैं, ये धार्मिक लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा मुहूर्त चाहिए, गृह प्रवेश करे, विवाह करे, ऐसे ऐसे कुछ पुण्य कार्य करने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं. और जो पुण्य कार्य करने के लिए कोई तिथि नहीं मिलता है वो बड़े दुखी हो जाते, नाराज हो जाते हैं और अधिक मास को बहुत घृणा करने लगे, बोलने लगे मल मास है, इसके अंदर कोई अच्छा शुभ तिथि है ही नहीं. इसके वजह से अधिष्ठात देवी मल मास के या अधिक मास के अधिष्ठात देवी बड़े दुखी हो गए. दुखी होके तपस्या करने लगी, भगवान विष्णु का आराधना करने लगी. विष्णु प्रसन्न होके अधिष्ठात देवी को कहने लगे, मल मास के अधिष्ठात देवी को क्यों रो रही हो, अपनी दिल की व्यथा कहने लगी. हर एक व्यक्ति इस प्रपंच में सब लोग बार बार इसी बात को कहे तो मल मास हो, अधिक मास हो, कोई काम के नहीं हो, तो बिचारी वो बहुत दुखी होकर विष्णु के पास जाके अपनी दुख की व्यथा कह सुनाने लगी. विष्णु कहने लगे तुम चिंता मत करो, आप तो मेरे शरण में आए हो तो सभी शुभ तुम्हारे जीवन में होगा, तो आपके महीने में सभी लोग पुण्य कार्य करेंगे, अच्छे आध्यात्मिक कार्य करेंगे करके वरदान दिया. लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थी. तब विष्णु ने कहा चलो तुम्हारा उपाय, तुम्हारा दुख का उपाय जो है कृष्ण दिखाएंगे. विष्णु स्वयं अधिष्ठात देवी पुरुषोत्तम मास की अधिष्ठात देवी, अभी उनका नाम पुरुषोत्तम मास नहीं हुआ, अधिक मास की अधिष्ठात देवी को लेके गए कृष्ण के पास। तो कृष्ण के पास जैसे लेके गए, कृष्ण जो है उनके गोलोक वृंदावन धाम से ऐसा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था, तो अधिक मास की अधिष्ठात देवी जो है वो इस प्रकाश को देख के बिल्कुल चौंक गई, वो देख नहीं पा रही थी। तो विष्णु ने उनको अपने पीछे रखा और सामने से वो चलते चलते कृष्ण के पास टिके गए। तो कृष्ण देखा अधिक मास की अधिष्ठात देवी को, इस देवी को कहा, क्यों रो रही हो? गोलोक वृंदावन धाम में आने के बाद इस प्रकार कोई रोता नहीं है, इधर केवल आनंद ही आनंद रहता है, तुम्हारा दुख का कारण क्या है? तो विष्णु पूरा इस अधिक मास की अधिष्ठात देवी का, इस देवी का दुख को वर्णन करने लगे। तब कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम मेरे शरण में आई हो, तुमको केवल शुभ ही होगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महीने में जो भी अगर कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई भी पुण्य कार्य करता है, उनको अन्य महीनों में करने से 16 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। खास करके तुम मेरे शरण में आए हो, इसके वजह से ये तुम्हारा जो महीना है वो केवल और केवल मेरे भक्ति के लिए ही होगा। अन्य पुण्य कार्य अगर कोई कर भी देता है मेरे संबंध के बिना, उसका फल प्राप्त नहीं होगा, केवल मेरा भक्ति का ही फल प्राप्त होगा। ये भौतिक स्तर का पुण्य और पाप के फल जो है प्राप्त नहीं होंगे, ये विशेष महीना है, ये मेरा ही महीना समझो। फिर भी वो देवी कहने लगी, मुझे तो सब लोग कहते हैं अधिक मास अधिक मास अधिक मास, सारे महीनों को आपने अपना नाम दे दिया, कार्तिक मास को आपने दामोदर दे दिया, वैसे केशव नारायण वासुदेवा ये सब जो नाम है, केशवाय नारायण माधवाय नम गोविंदा, ये सब महीने के नाम आ गए, मेरा तो कोई नाम नहीं रहा, सब लोग अधिक अधिक बोलते रहेंगे, ये अधिक मास कोई नाम होता है क्या मेरा? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा नाम है पुरुषोत्तम, ये मेरे महीना, ये जो महीना है ये मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा, तो इसका नाम रहेगा पुरुषोत्तम मास। तो ये देख के देवी बड़े खुश हो गए, खुश होके तो वापस वो आ गई। और उस समय से लेके अन्य जितने भी 12 महीना है, 12 मास है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को माना गया है, क्योंकि इस महीने में सर्वोच्च कार्य संसार का भक्ति के अलावा वो कोई अन्य कार्य पूर्ण तरीके से वर्जित है, ना गृह प्रवेश, ना कोई विवाह का संस्कार, ना वो संस्कार, कोई भौतिक कार्य करना नहीं चाहिए, केवल और केवल आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा अन्य महीनों की तुलना में ये अधिक मास की अधिष्ठात देवी को प्राप्त हुआ, स्वयं भगवान ने पुरुषोत्तम अपना नाम जो है उनको दे दिया। तो कृष्ण ने कहा विष्णु को कि तुम बहुत अच्छा किया, तुम इधर आए हो, उनको लेके आए, इसलिए तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। ये विष्णु के लिए पूर्ण तरीके से समर्पित किया हुआ नाम रहेगा, मास रहेगा, और इसके अंदर वैष्णवों के लिए ही विशेष मास है। जो भी व्यक्ति कुछ भी भक्ति करता है तो उसको भक्ति का 16 गुना लाभ प्राप्त होता है, तुम्हारी कीर्ति बहुत होगी करके भगवान कृष्ण विष्णु को कहा और भेज दिया। अभी ये जो हमने अभी कहा, ये जो वृत्तांत, ये कहाँ वर्णन हुआ है? ये वर्णन हुआ है पद्म पुराण में। पद्म पुराण में ऐसी घटना आती है, जब पांडवों की वनवास था, तो वनवास में काम्य वन में पांडव लोग वनवास कर रहे थे, उस समय बड़े दुखी थे पांडव, और उनसे मिलने के लिए कृष्ण आए। तो पांडव ने कृष्ण को सब अपना दुख की व्यथा बताई, दुर्योधन ने किस प्रकार उनका राज्य को हड़प लिया, द्रौपदी को किस प्रकार वस्त्र हरण करने के लिए दुशासन में प्रयास किया, आप आके रक्षा किए, सब वर्णन किए। करना के बाद तो कृष्ण को बहुत क्रोध आया, क्रोध ने कहा मैं संसार को पूरा भ्रष्ट कर दूंगा, मेरे भक्तों को दुर्योधन ऐसा करता है उनको नाश कर दूंगा, बड़े क्रोधित हो गए। तो पांडवों ने प्रार्थना करके कृष्ण को शांत किया, शांत करके कृष्ण को कहते हैं आप ऐसा मत कीजिए। तब कृष्ण ने कहा सुनो, क्योंकि तुम मेरे शरणागत भक्त हो, और तुम पांडव बड़े नेक हो, धर्म निष्ठावान हो, तुमसे प्रसन्न होके मैं आप लोगों को एक वृत्तांत सुनाऊंगा। अभी जो वृत्तांत मैंने अभी कहा किस प्रकार पुरुषोत्तम मास जो है वो मल मास अधिक मास कृष्ण का शरण लिया, ये पूरा जो वृत्तांत कृष्ण ने इन पांडवों को सुनाया। सुना के कृष्ण ने कहा, हे पांडव, ये इस प्रकार का दुख तुम्हारे जीवन में इसलिए आया है क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास के व्रत को पालन नहीं किया है। इससे सारा तुम्हारा राज्य जो है दुर्योधन हड़प लिया है और द्रौपदी को इस प्रकार का कष्ट आया है। आपको इस प्रकार का कष्ट के कारण एक ही है, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत को नहीं किया। भाई पुरुषोत्तम मास की महिमा के और वृत्तांत सुनाता हूं। कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी इस प्रकार तुमको इस प्रकार के कष्ट क्यों आया है, इसके पीछे भी एक वृत्तांत है। तुमने पिछले जन्म में ये अधिक मास उसको तुमने निंदा की थी, उनके प्रति अपराध किया, तुमने उसको पालन नहीं किया, उसकी वजह से इस प्रकार के कष्ट तुम्हारे जीवन में आए। तो कृष्ण द्रौपदी के पिछले जन्म के इतिहास को वर्णन करते हैं। वर्णन करते हुए उन्हें कहा, एक बहुत बड़े ऋषि थे जिनका नाम था मेधावी। ये मेधावी नामक ऋषि, उनको एक पुत्री थी। क्या हुआ है, पुत्री बालिका थी, बालिका की अवस्था में उनकी माँ, पुत्री की माँ यानी मेधावी की जो पत्नी पत्नी है, वो उनका मृत्यु हो गया। ये बेचारे तपस्वी थे, ऋषि थे, भगवान की आराधना कर रहे थे और भगवान की आराधना में तपस्या में मग्न होके उनको उनके मन में ये विचार ही नहीं आया कि मेरी पुत्री को मेरी कन्या को विवाह कराना है। हर पिता का कर्तव्य होता है एक योग्य वर को ढूंढ के अपनी कन्या को कन्यादान करना, विवाह कराना। लेकिन ये ऋषि इस बात को भूल गए और समय आने पर ऐसा हुआ, ये ऋषि भी अपना प्राण त्याग कर दिए। बिचारी अकेली रह गई और कन्यापन को प्राप्त किया और उनके मन में तीव्र इच्छा थी पति को प्राप्त करना, पति को प्राप्त करना। उनको विवाह नहीं हुआ था, कराने वाले नहीं थे, इसलिए बिचारी बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। आश्रम में अकेली थी, बहुत सुंदर थी, सारे सद्गुणों से संपन्न थी, लेकिन उनका विवाह नहीं हुआ था। उस समय उनके पिता से मिलने के लिए उनके मित्र, पिता के मित्र थे और एक ऋषि जिनका नाम था दुर्वासा, वो आए। वहां के उनको पता लगा उनके मित्र, उनका मृत्यु हो गया, तो बिचारी इस बालिका से बात करने लगे। दुर्वासा ने कहा कि तुम्हारा दुख का कारण क्या, इतना खिन्न क्यों बैठी हो। तो अपनी दुख की व्यथा बताने लगी, मुझे कोई पति नहीं है और मुझे विवाह नहीं हुआ है, अभी मेरा उम्र और बीतता जा रहा है, मैं क्या करूं दुर्वासा जी। तो दुर्वासा ने कहा, आप चिंता मत करो, अभी कुछ ही समय में अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का व्रत को पालन करो, तुम्हारे जीवन में केवल सुखी सुख रहेगा और कृष्ण की भक्ति को भी प्राप्त करोगी, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो वर्णन करते हैं, ये जो मेधावी की पुत्री है वो दुर्वासा को बोलने लगी, ये तो वैसे तो अधिक मास है, मल मास है, उस पे कौन सा व्रत होता है, ये तो अधिक चीज के अंदर कोई तो पुण्य तिथियां तो है ही नहीं, अच्छे मुहूर्त तो है ही नहीं, तो इसमें हम क्यों करें। आप मुझे ठग रहे हो, आप मुझे गलत संदेश दे रहे हो। इस प्रकार वो दुर्वासा मुनि को अपशब्दों के द्वारा पुरुषोत्तम मास या अधिक मास को अवहेलना करने लगी। तो दुर्वासा तो वैसे बहुत कोपिष्ट है, बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को शांत किया। ऐसा लगता है कि दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो जाते तुरंत शाप दे देते हैं। पहली बार ऐसा वो अपने क्रोध को शांत किया कि वो सोचने लगे, तुमने मेरे प्रति अपराध किया लेकिन मैं तो अपनी आँख को संभाल लूंगा, मैं अपनी आँख को शांत कर लूंगा, क्योंकि तुम मेरे मित्र की पुत्री हो और साथ साथ में वैसे तुम एक स्त्री हो और बहुत दुखी हो, उस अवस्था में कुछ भी बोल सकती हो, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास अधिक मास का जो व्रत है उसके प्रति तुमने अपराध किया है, इसका परिणाम तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। जैसे दुर्वासा मुनि ने इस प्रकार कहा तो ये जो मेधावी की जो पुत्री है वो बहुत दुखी हो गई और उनका शरीर क्षीण होने लगा और जल्दी से जल्दी उनके उनकी सुंदरता सब नष्ट हो गया और ऐसे ऐसे बहुत बीमार ग्रस्त, बहुत ही खिन्न हो गई, सारा ऐश्वर्य आश्रम से निकल गया, वो बिचारी बहुत बहुत दुखी हो गई। तो सोचने लगी, मेरे जीवन में और कोई आश्रय नहीं है, तो तपस्या करने लगी, शिव जी का उपासना करने लगी और 9000 साल तपस्या करने लगी। ये सब वर्णन पद्म पुराण में आता है। ऐसा तीव्र तपस्या करने लगी गर्मी के मौसम में धूप के समय अग्नि के पास में बैठ के तपस्या कर रही थी, ठंडी के मौसम में जलाशय के अंतर्गत उधर बैठ के तपस्या करने लगी। इनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न होके शिव जी एक दिन प्रकट हुए। प्रकट होके वो पूछने लगे कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो शिव जी को देख के ये पुत्री, मेधावी की पुत्री, हड़बड़ाते हुए शिव जी से वरदान मांगने की उत्सुकता में बोलने लगी, शिव जी मुझे एक पति चाहिए, 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 पांच बार बोली। जैसे इस प्रकार पांच बार बोली, शिव जी ने कहा आशीर्वाद दिया तुमको पांच पति होंगे। ये सुन के फिर वापस दुखी होगी, पांच पति हो जाएंगे तो मुझे सब लोग अवहेलना करेंगे, क्या क्या तो बोलेंगे, आप कृपया करके मुझे माफ कर दो, मैं तो हड़बड़ाते हुए आनंद के साथ आपको दर्शन करके मैंने पांच बार बोल दिया। शिव जी ने कहा मैंने तो एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। तो रोना शुरू कर दी शिव जी के सामने, ऐसा मत करो मेरे साथ। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि ये जो आपको पांच पति प्राप्त होंगे इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। तो आप सबको मालूम है यही मेधावी की पुत्री अगले जन्म में द्रुपद के पुत्री के रूप में प्रकट हुई। वो भी कैसे प्रकट हुई, शिव जी का द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किए महातपस्वी जो है किसी के पुत्री के रूप में जन्म ले सकती। वो यज्ञ कुंड से दृष्टद्युम्न के साथ, जब द्रुपद ने यज्ञ किया था तो दृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी भी महापतिव्रता प्रकट हुई। तब कृष्ण कहते हैं द्रौपदी देखो पिछले जन्म में तुमने दुर्वासा मुनि के सामने अधिक मास के प्रति तुमने अपराध की थी, इसके वजह से तुम्हारे जीवन इस प्रकार के दुख आ रहे हैं। अभी एक समय आ रहा है, अभी कुछ ही दिनों में अधिक मास आ रहा है, कृष्ण स्वयं पांडवों को कहते हैं और हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं, अभी कुछ ही दिनों में अधिक मास आ रहा है, इसलिए अपराध करने से बचे, अधिक मास के यानी पुरुषोत्तम मास के व्रत को अच्छी तरीके से पालन करें। अगर नहीं करेंगे द्रौपदी को याद कीजिए, पांडवों को याद कीजिए, और पुरुषोत्तम मास सारे 12 मास में 12 महीनों में से श्रेष्ठ मास है, परम सौभाग्य है। अभी 15 मई से हम पुरुषोत्तम मास का व्रत को पालन करने का, अनुष्ठान करने का महासौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप पूछ सकते हो कि पुरुषोत्तम मास में हम करें क्या। वैसे पद्म पुराण में, पवित्रोत्तर पुराण में, स्कंद पुराण में अनेकों पुरुषोत्तम मास की लीलाओं का वर्णन किया गया है। एक जगह वर्णन आता है कि राजा नहुष ने पुरुषोत्तम मास का व्रत को पालन करके इंद्रत्व को प्राप्त किया, बाद में यथावत अहंकार आ गया, अहंकार के वजह से उन्होंने सप्त ऋषियों को उन्होंने निंदा किया, अपमान किया, वापस उनको इंद्रत्व को खोना पड़ा। उतना ही नहीं, पुरुषोत्तम मास के समय ही था भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को वध किए, ये भी पुरुषोत्तम मास के समय में हुआ, क्योंकि उन्हें कहा 12 महीने में कोई महीने में मुझे मेरा वध नहीं होना चाहिए, अधिक मास में भगवान ने वध कर दिया हिरण्यकश्यप का। इसलिए ये बहुत ही श्रेष्ठ मास है, भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए, हर प्रकार का सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए अधिक मास का व्रत, पुरुषोत्तम मास का व्रत से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भौतिक कार्य नहीं करना, केवल आध्यात्मिक कार्य के लिए बना हुआ मास है। अन्य महीनों में आपको कुछ अच्छे तिथियां मिल जाती हैं, इसमें नहीं मिलती, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पूर्ण तरीके से मन एकाग्रचित होके भगवत भजन में लगा सकते हैं। व्रत को कैसे पालन करें उसके अनेकों अनेकों नियम बताए गए, लेकिन मुख्यतः हम तीन बातों को कहते हैं। सुबह जल्दी उठे, पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त की अवधि बहुत कम रहता है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि जो है वो सूर्योदय के 1.5 घंटे से पहले लेके सूर्योदय का 1 घंटे भी, केवल आधा घंटे का समय होता है। इसमें आपको 4 बजे उठ जाना चाहिए, 4:30-4 बजे के पहले उठ जाना चाहिए ये महीने के अंदर। वैसे तो रोज उठेंगे अच्छी बात है, कम से कम ये महीना तो उठो। उठ के क्या करो, भगवान का नाम जप करो, ये पहला व्रत है। दूसरा क्या है, पुरुषोत्तम मास के समय में विशेषता भागवत की होती है, खूब खूब जितना हो सके उतना भागवत पढ़ो, उतना हो सके भागवत सुनो, भागवत सप्ताहें आयोजन करो, भागवत कथाओं का आयोजन करो, भागवत को सुनो, ये विशेषता है पुरुषोत्तम मास में। और तीसरा क्या है, तीर्थ यात्रा, पूरा अगर एक महीना तीर्थयात्री स्थान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम तीर्थ यात्रा तो करके आइए। तीन दिन जो है तीर्थ स्थान में रह के गंगा या यमुना का स्नान करने का विशेषता है। वो कौन सी तिथियां हैं? वो है नवमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अमावस्या। इनमें से आप कोई तीन तिथि चुन लीजिए, उसमें तीर्थ स्थान में स्नान कीजिएगा और भगवान की भक्ति एकाग्रचित्त होते हुए। ये भी मत सोचो कि मेरे दुकान को उद्घाटन करना है, कि बेटी का शादी करना है, वो सब चीजें बाकी महीनों में, कि ये महीना केवल और केवल विष्णु भक्ति के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए ही है। परम सौभाग्य हमारा अधिक मास पुरुषोत्तम मास इसका व्रत को पालन करके अपना जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्ण।
घन श्याम से निराला कोई और नहीं, कृष्ण मुर्मु कुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, कृष्ण मोर मुकुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, ऐसा चक्र सुदर्शन वाला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, यमुना तट पे देनु चरावे, मीठी मुरली तान सुनावे, यमुना तट पे देनु चरावे, मीठी मुरली तान सुनावे, ऐसा मोहन मुरली वाला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं। इंद्रा का वो मान उतारे, नक ऊपर गोवर्धन धारे, इंद्रा का वो मान उतारे, नक ऊपर गोवर्धन धारे, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, अर्जुन के वो रथ को हाके, श्याम सुंदर गिरिधारी बाके, अर्जुन के वो रथ को हाके, श्याम सुंदर गिरिधारी बाके, गीता ज्ञान सुनाने वाला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, राधा कृष्णा के गुण गाओ, चरणों में तुम शीश झुकाओ, राधा कृष्णा के गुण गाओ, चरणों में तुम शीश झुकाओ, ऐसा नंद के दुलाला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं।